नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज हम आपकी किताब सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु। इसका मतलब कि इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट या इंडिया की वेदर कंडीशन के बारे में समझेंगे। से पहले बच्चों, हमने इस चैप्टर के कुछ पोर्शन को ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। हमने देखा कि कैसे हम क्लाइमेट को डिफाइन कर सकते हैं, क्लाइमेट का इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम अपने क्लाइमेट को किस नाम से बुलाते हैं। फिर हमने देखा कि मॉनसून क्या होता है, मॉनसून को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और इसके साथ हमने एक या दो मैप्स को भी डिस्कस किया। हमने देखा बच्चों कि भले ही कंट्रीज या रीजन्स सेम लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन फिर भी उनमें वेरिएशंस आ सकते हैं उनके टेम्परेचर में, एयर की ह्यूमिडिटी में, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो अभी तक हमने इसी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की। इसके बाद हमारी संस्कृति में बच्चों 6 मौसमों के बारे में जानकारी मिलती है और हमें इस 6 मौसम के पुराने नामों को देखना जरूरी था, सो हमने देखा। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में यानी मॉडर्न इंडिया में केवल 4 सीजन्स मशहूर हैं या पॉपुलर हैं, और हमने उन चारों सीजन्स के सर्कुलेशन को समझना शुरू किया था। यानी अगर शीत ऋतु है, जिसको हम इंग्लिश में विंटर सीजन कहते हैं, तो विंटर सीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है, एयर सर्कुलेशन कैसा रहता है, विंटर सीजन में बारिश होती है या नहीं होती, अगर होती है तो कौन से रीजन में होती है, अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। और इन हवाओं के हमने अभी तक अलग अलग नाम देखे हैं। वैसे ही बिल्कुल हमने समर जो सीजन होता है यानी ग्रीष्म ऋतु, इसके तापमान के यानी टेम्परेचर के स्ट्रक्चर को समझा कि कौन से रीजन में कैसा टेम्परेचर रहता है और ओशियन वाले एरिया में टेम्परेचर माइल्ड रहता है। इसके बाद बच्चों हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बढ़ती रहती हैं, और आज हमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, यानी कि समर सीजन के नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम वर्षा के नाम से जानते हैं, आज हमें समर सीजन में रेनफॉल को पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं एक नई जानकारी जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, या अपने आसपास जो वातावरण है इसके बारे में कुछ नया जानने के लिए? तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 139 पर, और इसी पर हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो ब्लू कलर के इंक से लिखा है। इसका नाम है वर्षा, जिसमें लिखा है इस ऋतु में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। पश्चिमी बंगाल में काल वैशाखी तूफानों के साथ वर्षा होती है। दक्षिणी भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा तथा कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों की वर्षा को फूलों की बौछार कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, असम में तूफानों के साथ ओलावृष्टि भी हो जाती है। तो इस पैराग्राफ से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि समर सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु में अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, यानी रेनफॉल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और अगर ये होती भी है, यानी कि अगर वर्षा होती भी है बच्चों, तो भी अलग अलग जगहों पर हम इन वर्षा को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जानते हैं, और जब ये काल बैशाखी आती है बच्चों, तो अपने साथ तूफान, गर्जन और बहुत सारी वर्षा लेकर के आती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिणी भारत में एक बहुत फेमस तट है यानी कोस्ट, इसको हम मलाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। और जब मलाबार कोस्ट पर समर सीजन में बारिश होती है बच्चों, तब हम इसको एक खास नाम से जानते हैं, वो नाम है आम्र वर्षा। और ऐसे ही वो क्षेत्र जहां पर कहवा मतलब कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में इस बौछार को, इस वर्षा को फूलों की बौछार कहते हैं। और इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, असम में इन तूफानों के साथ ओले भी गिरते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब वर्षा होती है तो वो कम मात्रा में होती है, लेकिन वो बहुत लाभदायक होती है, यानी यूजफुल होती है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोडक्शन के लिए। जैसे पश्चिम बंगाल में हम इसे काल बैशाखी के नाम से जानते हैं, कहवा वाले क्षेत्र में यानी कॉफी प्रोडक्शन वाले रीजन्स में हम इसे फूलों की बौछार के नाम से जानते हैं, और मलाबार कोस्ट पर हम इसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। आप ये तीनों नाम हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आगे भी अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये हुआ हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसमें हमने देखा ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। अब हम देखेंगे अपना ख पार्ट, जिसमें लिखा है दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून काल। तो बच्चों, इसका जो पहला पॉइंट है वो है वर्षा ऋतु। इसमें लिखा है यह ऋतु हमारे देश की कृषि को जीवन प्रदान करती है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा इसी समय होती है। वर्षा ऋतु का काल पूर्णतः मानसून पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि हमारी कंट्री में बच्चों जो रेनी सीजन होता है वो दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून काल के अंडर आता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर वर्षा का कारण कौन सी पवने हैं, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि दक्षिणी पश्चिमी पवने हमारे देश में रेनफॉल करती हैं। और ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि एग्रीकल्चर के लिए वर्षा बहुत जरूरी है। अगर एग्रीकल्चर करना है तो पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी और रेनफॉल बहुत नेसेसिटी होता है। तो इसीलिए ये जो ऋतु है, इस सीजन को, रेनी सीजन को हम एग्रीकल्चर का बैकबोन कहते हैं। और हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में बच्चों जो बारिश होती है यानी जो रेनफॉल होता है वो इसी सीजन में होता है, यानी कि वर्षा ऋतु के समय बहुत ज्यादा बारिश होती है। वैसे बारिश तो हमने देखा कि शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है इन कंपेयर टू वर्षा ऋतु में। चलिए हम देखते हैं अपने इस वर्षा ऋतु की आगे की जानकारी को, जिसमें लिखा है तापमान। इसमें लिखा है मानसूनी वर्षा में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी कमी आने लगती है। जुलाई अगस्त के बाद कुछ क्षेत्रों में सितंबर में तापमान में वृद्धि हो जाती है। राजस्थान में सितंबर में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसका मतलब है बच्चों कि जब मानसूनी वर्षा होती है यानी वर्षा ऋतु में, इस टाइम पर तापमान जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। और ये होना नेचुरल है क्योंकि पानी जो होता है वो ठंडा होता है, और अगर बारिश होती है तो पानी की वजह से वेदर भी जो है वो बच्चों माइल्ड होता है। और फिर जुलाई और अगस्त वाले महीनों के बाद हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में सितंबर से जो तापमान होता है, सितंबर का तापमान बढ़ने लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सितंबर में बारिश जो है वो रिट्रीट करती है, यानी समाप्त तो होने लग जाती है। और अगर बारिश खत्म हुई तो फिर क्या होगा, गर्मी बढ़ने लग जाती है। अगर हम बात राजस्थान की करें बच्चों, तो केवल राजस्थान में सितंबर के महीने में टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हुई हमारी बात वर्षा ऋतु के तापमान के बारे में। चलिए देखते हैं कि वर्षा ऋतु की वायु दाब और इसकी पवने कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इसमें लिखा है, इस समय निम्न वायु दाब घने रूप में राजस्थान के थार मरुस्थल व पंजाब में केंद्रित हो जाता है। उच्च वायु दाब दक्षिणी में हिंद महासागर में केंद्रित होता है। इससे हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम में बनने के कारण ही यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। वायु दाब का केंद्र सरकने के साथ ही मानसून के नाम से जाना जाता है। वायु दाब का केंद्र सरकने के साथ ही मानसून पवने आगे बढ़ती रहती हैं। तो जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं बच्चों कि बारिश हमारे इंडिया में दक्षिणी पश्चिमी पवनों की वजह से पॉसिबल होती है, तो इससे आप ये बात समझ गए होंगे कि इस टाइम पर राजस्थान और जो थार मरुस्थल है वो इलाके में, और प्लस पंजाब जैसे इलाकों में, यानी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में इस टाइम पर, यानी कि वर्षा ऋतु में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाता है। और इसी कमी की वजह से दूसरी साइड में, यानी कि हिंद महासागर वाले एरिया में, वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है, और जिस वजह से जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स लेकर के जाती हैं, और इन हवाओं को हम दिशा हेतु दक्षिण पश्चिमी पवनों के नाम से जानते हैं। और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने साथ साथ बारिश लेकर के आती है। तो बच्चों, इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारे देश में बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। इसके बाद हमें वर्षा ऋतु में वर्षा वाले पॉइंट को देखना है। तो वर्षा वाले पॉइंट में लिखा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण प्रायद्वीप की स्थिति के कारण दो शाखाओं में बटकर हमारे देश में वर्षा करता है। ये दो शाखाएं हैं, पहली अरब सागरीय शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पवन की वजह से, यानी जिस विंड की वजह से हमारी कंट्री में बारिश होती है, उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। वो जब हमारी कंट्री में एंट्री लेती है तो जो सदर्न प्लेट्यूज हैं बच्चों, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन के कारण दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अब इस डिवीजन को हम दो नाम से जानेंगे, क्योंकि डिवीजन दो है तो नाम भी दो होंगे। पहला नाम है अरब सागरीय शाखा और उसका दूसरा नाम है बंगाल की खाड़ी की शाखा। खैर, अभी तो हमें इस टॉपिक से केवल इतनी जानकारी ही मिलती है, लेकिन बाद में आपको इन्हीं दोनों शाखाओं, जिसका नाम है अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखाओं को डिटेल में पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पहली शाखा यानी अरब सागरीय शाखा क्या कहती है। तो पेज नंबर 139 पर हमारी इस शाखा के बारे में लिखा है, यह शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक शक्तिशाली है। यह सबसे पहले पश्चिमी घाट से सीधी टकराती है। यहाँ पर इससे 250 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस शाखा का वेग यहीं पर समाप्त हो जाता है। इससे पठार के भीतरी भागों में अल्प वर्षा होती है, क्योंकि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। इसकी नागपुर उपशाखा नर्मदा ताप्ती घाटियों के मध्य में होती हुई आगे जाकर बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। एक अन्य उपशाखा गुजरात राजस्थान होते हुए सीधी पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाती है। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की स्थिति मॉनसून पवनों के समांतर होने के कारण यहाँ इनमें कम वर्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली शाखा है, जिसे हम अरब सागरीय शाखा के नाम से जानते हैं, वो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा के कंपैरिजन में बच्चों ज्यादा पावरफुल है। आप एक छोटा सा इमेजिनेशन करिए जिसमें हवा चल रही है अरेबियन सी की तरफ से। यानी ये आप सभी को पता होगा कि हमारी कंट्री के लेफ्ट साइड में अरब सागर है। अब जब अरब सागर की शाखा है तो हवा भी बच्चों अरब सागर से चलेगी। तो सबसे पहले अरब सागर से चलने वाली हवा पश्चिमी घाट से टकराती है। पश्चिमी घाट को हम इंग्लिश में वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, और इसके टकराने की वजह से यहाँ पर यानी पश्चिमी घाट पर 250 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और जो बच्चों इसकी वेग है यानी स्पीड है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद जब ये हवा धीरे धीरे प्लेट्यूज की तरफ एंटर करती है, पठार जिसको हम हिंदी में जानते हैं, तब इनकी स्पीड की कमी की वजह से अब इसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी ये एक बार वेस्टर्न घाट से टकरा चुकी है। तब वेस्टर्न घाट पर बारिश करने के बाद जब ये अंदर और जाती है यानी पठारों वाले क्षेत्र में, तब यहाँ पर ये ज्यादा वर्षा नहीं करती है बल्कि कम वर्षा करती है। इसकी कम वर्षा करने वाले कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बच्चों इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेन शेडो जोन कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेस्टर्न घाट में टकरा जाने की वजह से ये वेस्टर्न घाट के उस साइड में ज़्यादा रेन कर देता है जिस साइड से ये ब्लो होकर के आ रहा होता है, और उसके दूसरी तरफ जिस साइड में प्लेट्यूज वाला इलाका है उस साइड में इस हवा के पास ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, इसी वजह से वर्षा में थोड़ी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, हम इसको रेन शेडो जोन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और इसी शाखा का यानी अरब सागरीय शाखा का एक और शाखा होता है बच्चों, उस शाखा का नाम है नागपुर उपशाखा, जिसे हम नर्मदा और ताप्ती के घाटियों के बीच में देख सकते हैं। तो जो ये नागपुर उपशाखा है अरब सागरीय शाखा की उपशाखा, ये नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के बीच से होकर के जाती है और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे मिल जाती है। एक और इसकी उपशाखा है जिसको हम गुजरात की उपशाखा के नाम से जानते हैं। तो गुजरात वाली जो उपशाखा है बच्चों, वो राजस्थान के रास्ते होते हुए डायरेक्ट वेस्टर्न हिमालयस पर पहुंच जाती है, यानी कि पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाती है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है बच्चों, उसकी जो श्रेणियां हैं, उसका लोकेशन कुछ ऐसा है कि वो जिस डायरेक्शन में हवा ब्लो होती है, वो पर्वत श्रेणियां भी उसी डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलल पोजीशन में खड़ी हैं, और इसी वजह से वहां हवाओं को टकराने के लिए कुछ मिलता नहीं है, वो डायरेक्ट गुजर जाती हैं। और इसी एरिया में यानी राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये शाखा यानी अरब सागरीय शाखा काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमने दूसरी शाखा पढ़ी थी बच्चों, वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसमें लिखा है, यह शाखा अवरोध के कारण दो उपशाखाओं में बट जाती है। एक उपशाखा अरुणाचल प्रदेश व असम की ओर चली जाती है। यह उपशाखा गारो पहाड़ियों से टकराकर इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। यहाँ पर मौसिनराम में इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसकी दूसरी उपशाखा हिमालय की तराई के सहारे आगे बढ़ती है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड में अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में जाने के साथ साथ इससे वर्षा प्राप्ति की मात्रा घटती जाती है। इससे पश्चिमी पंजाब व राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। अब इसके बाद हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलना है बच्चों, जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं देखी हमने, जिसमें से पहली शाखा के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि दूसरी शाखा की क्या स्पेशलिटी, क्या खासियत है। इसमें लिखा है, यह शाखा अवरोध के कारण दो उपशाखाओं में बट जाती है। एक उपशाखा अरुणाचल प्रदेश व असम की ओर चली जाती है। यह उपशाखा गारो पहाड़ियों से टकराकर इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। यहाँ पर मौसिनराम में इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसकी दूसरी उपशाखा हिमालय की तराई के सहारे आगे बढ़ती है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड में अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में जाने के साथ साथ इससे वर्षा प्राप्ति की मात्रा घटती जाती है। इससे पश्चिमी पंजाब व राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। तो अभी हम अपने इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जो हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहती हैं, उनका क्या नेचर है बच्चों। तो जैसा कि हमें इस पैराग्राफ से समझने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हुई हवाएं दो उपशाखाओं में बटी हुई रहती हैं। एक उपशाखा जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश और असम की ओर चली जाती है, और यही उपशाखा आसाम और अरुणाचल प्रदेश, या यूं कह लें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिनको हम गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ के नाम से जानते हैं, तो ये उपशाखा उन पहाड़ों से टकरा करके इस क्षेत्र में काफी ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल करती है, और इसीलिए एक बहुत प्रचलित नाम निकल के आता है, जो है बच्चों मौसिन राम। मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है और कभी कभी ऐसा भी कंपेयर किया जाता है कि इसी इंडिया में एक जगह है राजस्थान जहां पर हार्डली बारिश होती है और दूसरी जगह है मौसिन राम जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये देखा हमने बंगाल की खाड़ी की शाखा का पहला उपशाखा। जो बंगाल की खाड़ी की शाखाओं का जो दूसरी उपशाखा है बच्चों, वो हिमालय पर्वत की जो तराई क्षेत्र हैं उनके सहारे आगे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते ये बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में बहुत अधिक वर्षा कर देती है और पश्चिम की तरफ जाते जाते यानी वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ जब ये आगे बढ़ रही होती है तब इसकी कैपेसिटी बारिश करने की थोड़ी खत्म हो जाती है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न स्टेट्स में यानी पश्चिमी भाग में वर्षा की जो मात्रा होती है बच्चों वो बहुत कम होती है। तो इसी वजह से जो पश्चिमी पंजाब है या राजस्थान का इलाका, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट ऋतु पर जिसका नाम है बच्चों शरद ऋतु। इसमें लिखा है यह मानसून लौटने का काल है। इस समय मानसून के लौटने से एवं सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में जाने से तापमान में कमी आ जाती है। तापमान में परिवर्तन से वायुदाब का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्वी हो जाती है। इनके द्वारा तमिलनाडु व पठार के कुछ आंतरिक भागों में वर्षा होती है। इसका मतलब कि ये जो शरद ऋतु होती है बच्चों वो और कुछ नहीं बल्कि मॉनसून रिट्रीटल कहलाती है। इसका मतलब ये पीरियड, ये ऋतु मॉनसून के लौटने का टाइम पीरियड है और इसी टाइम पर जब मॉनसून लौट रहा होता है तब सूर्य की जो डायरेक्ट रेज होती हैं यानी सन रेज होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा चली जाती हैं। इसका मतलब कि सन रेज जो है शरद ऋतु में सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी आ जाती है। और टेम्परेचर में जब कमी आती है तो आप सभी जानते हैं कि ठंड बढ़ जाती है और जो पवनों की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम से बदल करके उत्तर पूर्वी हो जाती है। इसका मतलब कि अब ये दक्षिण पश्चिम की तरफ न बह करके उत्तर से पूर्व की तरफ बहने शुरू कर देती है और इसी के द्वारा यानी इन्हीं उत्तर पूर्वी हवाओं के चलते बच्चों तमिलनाडु और जो हमारा पठार का इलाका है इन इलाकों में ठंड के मौसम में भी काफी अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। तो अब आप समझिए कि उत्तर पूर्वी जो हवा चल रही होती है उसके कारण कहाँ पर बारिश होती है बच्चों, तो उसके कारण ठंड के मौसम में सदर्न स्टेट्स में बरसात हो रही होती है। बच्चों उम्मीद है कि हमने अभी तक जितनी भी ऋतुओं के बारे में पढ़ाई की आप सबको वो सभी जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप सभी को अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। और इसी के साथ हमारा आज का समय यहीं खत्म होता है, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा और आगे हम जो भारत में वर्षा का वितरण टॉपिक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ करके आइएगा जिससे कि अगर हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो और कोई उसमें डिफिकल्ट वर्ड हो तो आपको उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आप सभी को अलविदा कहूँगी। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।